ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما دیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز اگر حقیقی معنوں میں نماز ہو تو نمازی کو ہر طرح کی برائیوں سے اور فحاشیوں سے روک دیتی ہے۔ یعنی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، اگر ہم ویسے نماز پڑھ لیں تو یہ نماز بندے کو برائیوں سے روک دیتی ہے، بری باتوں سے روک دیتی ہے، فحاشیوں سے روک دیتی ہے، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد اور انعامات سے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیاوی فوائد، یہ کیا کم ہے کہ نماز سے آدمی کے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔ جی ہاں، آج ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے، تو کیا یہ کم ہے کہ بندے کو دل کو سکون مل جائے اور وہ نماز سے مل جاتا ہے؟ وہ سکون جس کا موجودہ انسان حد درجہ متلاشی ہے مگر اسے مل نہیں رہا، وہ حاصل نہیں کر پا رہا، گناہوں بری زندگی گزارتا ہے کس لیے؟ تاکہ مجھے سکون مل جائے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سکون الہی اسباب کے سوا دوسرے اسباب میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ انسان کے خالق و مالک نے یہ فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور نماز بھی تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی معاملے میں کبھی گھبراہٹ کا سامنا ہوتا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور نماز کے جو اخروی فوائد ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ کون سے ایمان والے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فلاح پانے والے ایمان والوں کے چند اور اوصاف का जिक्र किया गया और फिर आखिर में अल्लाह करीम ने फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। फरमाया जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं यही वारिस हैं। किसके वारिस हैं? फरमाया जन्नत के वारिस हैं। जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं वो जन्नत के वारिस बन जाते हैं। तो फलाह पाने वाले जो ईमान वाले सूरतुल मुमिनून में उनका जिक्र हुआ है तो पहला ही वस्फ नमाज के साथ मुतालिका है और फिर आखिरी वस्फ जो है उसका ताल्लुक भी नमाज के साथ है। नाजरीन, लेकिन ये सारे ख्वाब दुनियावी फवायद हों या उखरवी फवायद हों, ये बंदे को उसी वक्त हासिल होते हैं जब नमाज को उसकी शरायत के साथ अदा किया जाए। सेहत और कमाल नमाज की शर्तों में से जाहरी और बातनी दोनों शर्तें हैं और दोनों का लिहाज किए बगैर नमाज फ़ायदा नहीं देती, और इनमें से बास तो वो हैं जिनके बगैर नमाज सिरे से अदा ही नहीं होती। यानी बास चीज़ें ऐसी हैं कि जब छोड़ दिया जाए तो गोया नमाज हुई नहीं, फ़र्ज ही साकित नहीं हुआ, और बास से नमाज तो हो जाती है लेकिन नक्स उसके अंदर बाकी रहता है, गोया कि नमाज कामिल नहीं, फ़र्ज तो साकित हो गया है अलबत्ता नमाज कामिल नहीं है। और जिनसे नमाज होती नहीं यानी उनको छोड़ने से तर्क करने की वजह से नमाज ही ना हुई, मिसाल के तौर पे नमाज की शरायत तहारत, बंदा पाक ही नहीं है, नमाज पढ़े हजार मरतबा पढ़े लेकिन नमाज नहीं होगी। सितरे औरत के अपना वो बदन का हिस्सा के जो छुपाना जरूरी था, फर्ज था, वाजिब था, उसे छुपाया ही नहीं तो नमाज कैसे होगी। इस्तिक़बाल क़िबला, क़िबला इस तरफ है और चेहरा इस तरफ करके नमाज पढ़ रहा है, इस्तिक़बाल क़िबला ही नहीं किया तो फिर नमाज कैसे होगी। और पता भी है कि क़िबला दूसरी तरफ है और ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट दूसरी समत की तरफ मुंह करके खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, यूं ही वक्त अभी आया ही नहीं है और नमाज पहले ही पढ़ ली, नीयत की नहीं और नमाज अदा कर ली, तकबीर तहरीमा कहीं नहीं तो नमाज शुरू कैसे होगी। तो बास चीज़ें ऐसी हैं कि जो ना की जाए तो नमाज होती ही नहीं है। और बातनी शरायत में से जो पहली शर्त है वो है इखलास, नमाज में खलूस होना, नमाज में इखलास होना, इबादात में इखलास होना, ये बड़ी अहम शर्त है और ये बातनी शर्त है। यानी बंदे का खलूस कितना है कोई आम आदमी नहीं जान सकता, ये वो खुद ही बता सकता है कि मेरे दिल में इस इबादत के लिए इखलास कितना है। और दूसरी शर्त, फरमाया दूसरी शर्त जो बातनी शर्त है यानी उसका ताल्लुक बंदे के बातिन के साथ है, वो खुशू खुजू है, जो कि दरअसल नमाज की बारगाह इलाही में कबूलियत की एक अहम तरीन शर्त है। खुशू खुजू की ज़ाहरी अलामत क्या होती है? तादील अरकान, यानी ठहर ठहर कर समझ समझ कर नमाज को पढ़ना। और बातनी कैफियत ये है कि नमाज इस तरह पढ़ी जाए कि जैसे नमाजी अल्लाह तबारक व ताला को देख रहा है, और अगर ये कैफियत पैदा ना हो तो फिर बातनी कैफियत ये भी हो सकती है कि कम से कम बंदा अपने अंदर ये कैफियत तो पैदा करे कि मेरा रब मुझे देख रहा, और डेफिनेट कि ऐसा है, वो समीउ बसीर है, वो हमें देखता है, हम लाखों पर्दों में छुप जाए लेकिन वो फिर भी देखता है और हम उससे छुप नहीं सकते। इसी मफहूम को हदीस जिब्राइल में बयान किया गया, और जब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में एक इंसान की शक्ल में सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और आपसे चंद एक सवाल किए, जिसमें से पहला सवाल ये था कि हजूर बताइए ईमान क्या है, फिर पूछा इस्लाम क्या है, फिर पूछा एहसान क्या है, फिर क़यामत के बारे में सवाल किया, और पांचवें नंबर पर पूछा कि क़यामत की अलामतें ही बता दीजिए। तो इन पांचों सवालों में جب حضور نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ حضور فرمائیے احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، فاخبرنی عن الاحسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو فرمایا کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ تم کو عبادت کرتے ہوئے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص ہے، یہ خشوع و خضوع ہے، یہ باطنی کیفیت ہے کہ انسان اس باطن کی جو کیفیت ہے اس سے خود واقف ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ اس کی یہ کیفیت بنی بھی ہے یا نہیں بنی۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ فی زمانہ لوگوں کی، مسلمانوں کی اکثریت گویا کہ نماز میں کبوتر کے دانے چگنے کی طرح اٹھک بیٹھک کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک سجدہ کیا پورا بھی نہیں ہوا، دوسرے سجدے میں چلے گئے، اور جلسے کا واجب بھی ادا نہ کیا، اگر کیا تو کما حقہ نہیں کیا، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے۔ جی ہاں، سیدھا ہو جائے۔ یوں ہی قومہ کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ قومہ کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں، ایک تعداد ہے، نماز بس یوں پڑھتے ہیں کہ جلد بازی میں پڑھتے ہیں، اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں ہو پاتے۔ لہذا ضروری امر ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیکھ لیں کہ جن کا سیکھنا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احکام نماز سیکھیں، تو آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے طہارت کے حوالے سے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ستر عورت، کہ نماز کی شرائط میں سے ایک ستر عورت بھی ہے، اور یہ ستر عورت کہتے کس کو ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ ستر عورت کا مطلب کیا ہے۔ ستر عورت کے معنی یہ ہے کہ بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کا چھپانا ہم پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ اس آیت میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز، طواف، بلکہ ہر حال میں بندے پر واجب ہوتا ہے، اور یہ بھی فرما دیا گیا، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، عورتیں زینت یعنی مواضع زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ کہ جو خود بخود ظاہر ہے، کہ ان کے کھلے رہنے پر بر وجہ جائز ایک عادت جاری ہوتی ہے۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھا کہ زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی اور سنورتی ہے، جیسے زیور، سرما اور اس طرح کی چیزیں، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا یہ مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں یہ زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں، پنڈلیاں، البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہی ہوتے ہیں، جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں۔ فرمایا انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے، इसलिए इन आज़ा को जाहिर करने में हर्ज नहीं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, फी जमाना चेहरा भी छुपाया जाएगा, जैसा कि आप अक्सर ये समात करते रहते हैं कि औरत के लिए चेहरे का छुपाना भी वाजिब है। और ये जो हुक्म जाहिर करने का है, ये नमाज के हवाले से है। इस आयत मुबारका के बारे में बाज हमारे मुफस्सिरीन ने यहां तक भी लिखा है कि ज्यादा जाहिर ये है कि आयत में मस्कूर हुक्म नमाज के बारे में, जैसा कि मुला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना नुक्ते नजर बयान करते हुए ये बात कही कि ये जो हुक्म बयान किया जा रहा है कि जाहिर करना है इन आज़ा को, ये नमाज के बारे में है। यानी औरत नमाज पढ़ते वक्त चेहरे, दोनों हाथों और दोनों पाँव के अलावा पूरा बदन छुपाएगी। ये हुक्म औरत को है, देखने के बारे में नहीं है, क्योंकि औरत का तमाम बदन औरत यानी छुपाने की चीज़ है। शौहर और महरम के सिवा किसी और के लिए इसके किसी भी हिस्से को बेज़रूरत देखना ये जायज़ ही नहीं है, और इलाज वगैरह की ज़रूरत से फ़कत बकदरे ज़रूरत ही इसकी इजाज़त होती है। यह है सितरे औरत का मफहूम, माना या मुराद। मज़ीद आगे चलते हैं कि मर्द और औरत के बदन का वो कौन सा हिस्सा है जिसे औरत कहते हैं और इसका छुपाना भी फ़र्ज़ है। उलमा ने लिखा है कि मर्द के नाफ, नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक, नाफ इसमें दाखिल नहीं है और घुटने इसमें दाखिल हैं। नाफ के बिल्कुल नीचे से मर्दों के लिए शुरू होकर घुटनों समेत, यानी घुटने उसमें दाखिल हैं, और आज़ाद औरतों के लिए सारा बदन औरत है सिवाय मुंह की टिकली जो नमाज में ये जाहिर करती हैं, और हथेलियाँ और पाँव के तलवे। ये पांच आज़ा हैं, मुंह की टिकली, दोनों हाथ और दोनों पाँव, सर के लटकते हुए बाल और औरत की गर्दन, औरत की कलाइयाँ, ये सब भी औरत हैं, ये छुपाने की चीज़ें हैं, इनको छुपाना ये भी फ़र्ज है। और औरत का जो चेहरा है, अगरचे औरत नहीं मगर इसे गैरों के सामने खोलना ये भी मना है। मज़ीद एक और सवाल शामिल करते हैं, अगर सितर का कोई हिस्सा दौराने नमाज खुल जाता है तो नमाज होगी या नहीं होगी। हमारे फुकहा ने लिखा कि जिन आज़ा का सितर फ़र्ज है उनमें से कोई उज्व अगर चौथाई से कम खुल गया दौराने नमाज तो नमाज हो गई, और अगर चौथाई हिस्सा, यानी हर उज्व का अपना अपना हिस्सा देखा जाएगा, यानी जो उज्व खुला है उसका चौथा हिस्सा 1/4 अगर इससे कम खुलता है तो नमाज हो गई, और अगर चौथाई उज्व 1/4 पूरा का पूरा खुल गया और फौरन छुपा लिया जब भी नमाज हो जाएगी, और अगर फौरन ना छुपाया बल्कि 3 मरतबा सुबहानअल्लाह कहने की मकदार वो हिस्सा खुला रहा या जानबूझकर खोल दिया, पहली सूरत में तो गलती से ऐसा हो गया और दूसरी सूरत में जानबूझकर खोल दिया अगरचे के फौरन छुपा लिया हो, फरमाया इस सूरत में नमाज के दौरान जब ये अमल होगा तो नमाज ख़त्म हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी, नमाज जाती रहेगी। और अगर ऐसा हो कि इतना हिस्सा नमाज शुरू करते ही खुला था, यानी 1/4 खुला हुआ था, उस वक्त तकबीर तहरीमा कही, यानी इसी हालत में अल्लाहु अकबर कह लिया, तो नमाज मुनक्कद ही नहीं हुई, नमाज शुरू ही नहीं हुई। जब शुरू में ही अमल पाया गया, तकबीर तहरीमा कही, उस वक्त 1/4 हिस्सा वो हिस्सा वो उज्व का के जिसका छुपाना फ़र्ज था खुला हुआ था, तो इस बंदे की नमाज ही गोया के नहीं हुई, क्योंकि नमाज शुरू ही नहीं हुई। मज़ीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल ये है, क्या बारीक कपड़ा सितरे औरत के काम आ सकता है या नहीं आ सकता। इस हवाले से अर्ज है कि इतना बारीक कपड़ा कि जिससे बदन चमकता हो, यानी जिल्द नजर आए, बदन चमकता हो, ये सितरे औरत के लिए काफ़ी नहीं। इस तरह अगर नमाज पढ़ ली, यानी ऐसा कपड़ा पहनकर अगर बंदे ने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी, और ऐसा बारीक कपड़ा कि जिससे सितरे औरत ना हो सके, ये अलावा नमाज के भी ये पहनना जायज़ नहीं है, हराम है। जी हाँ, यहाँ सिर्फ बात नमाज की नहीं है, यहाँ सितरे औरत की है। नमाज के अलावा पहना सितरे औरत के काम नहीं आ सकता, क्योंकि बदन छलक रहा है, बदन चमक रहा है, नज़र आता है, जिल्द नज़र आती है, तो ये नमाज के अलावा भी पहनना हराम है। और नमाज के दौरान यानी नमाज इन कपड़ों को पहन कर पढ़ी गई तो फिर नमाज तो हुई ही नहीं। बाज़ ऐसे ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, जो इस तरह के कपड़े बसा औक़ात पहन लेते हैं कि जिससे रान चमकती है, यानी बहुत बारीक कपड़ा होता है, कि वो जगह कि जिसे छुपाना फ़र्ज़ है वो नमाज में ज़ाहिर हो रही, या ऐसे दुबट्टे ले लेती हैं हमारी बाज़ ख़वातीन इस्लामी बहनें, जो दुबट्टा ऐसा है कि जिससे बालों की स्याही चमक रही है। तो इस सूरत में ऐसा बारीक कपड़ा लेकर, ऐसा बारीक दुबट्टा लेकर कि जिससे बालों की स्याही चमके, उसे ओढ़ कर जब नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। लिहाजा मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सबको चाहिए कि नमाज की जितनी भी शरायत हैं हम उनके बारे में सीखें, तहारत के बारे में, सितरे औरत के बारे में। मुख्तसर कलाम अहकाम नमाज प्रोग्राम में आपने समाअत फरमाया, इसे बार बार सुनिए और सुनकर इन्हें याद रख कर अमल करने की कोशिश भी करें। तो आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आज अपने प्रोग्राम में रिकॉर्डेड सवाल भी चलाते हैं, आप समाअत फरमाइए। जी सवाल चलाइए।
मेरा नाम मोहम्मद नवीद रज़ा तारी है और मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि फ़र्ज नमाज की कोई सी दो रकतों में से तो फातिहा पढ़ना वाजिब है, तो क्या चार रकत फ़र्ज में दूसरी तीसरी रकत में से तो फातिहा की किरात करने से वाजिब अदा हो जाएगा कि नहीं?
चार रकत वाले फ़र्ज जैसे जोहर, असर और इशा, इनकी कोई सी भी दो रकत और इसी तरह तीन रकत वाले फ़र्ज जैसे नमाज मगरिब, इनमें तीन रकतें होती हैं, इन तीन रकतों में से कोई सी भी दो रकत में मुतलकन किरात करना ये फ़र्ज है, और पहली दो में ही होना ये वाजिब है। यानी चार वाली नमाज में किसी भी दो में, और नमाज मगरिब जो तीन वाली है इसमें भी किसी भी दो में किरात करना ये फ़र्ज़ है। और फिर अब एक बात वाजिब की भी आ जाती है, वाजिब ये है कि पहली ही दो रकातों में किरात हो, ये वाजिब भी है। लिहाजा अगर कोई कसदन जानबूझकर पहली दो रकातों में किरात बिल्कुल ना करे मगर आखिरी दो रकतों में कर ले, या मगरिब की पहली या और तीसरी रकत, या दूसरी और तीसरी रकत में किरात कर ले, तो फ़र्ज तो अदा हो जाएगा मदनी चैनल के नाज़रीन, मगर कसदन यानी जानबूझकर तरके वाजिब के सबब से नमाज वाजिबुल एआदा हो जाएगी। अब अगर कोई जानबूझकर ऐसा करे तो फिर नमाज वाजिबुल एआदा, और अगर भूलकर ऐसा हो गया है तो फिर इस सूरत के अंदर आखिर में सजदा सहव करने से नमाज हो जाएगी। फ़र्जों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकत में मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत मिलाना, या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयत के बराबर हो, या तीन छोटी आयतें पढ़ना, ये वाजिब है। और ये वाजिब उन्हीं दो रकातों में अदा होगा जिनके बारे में कह दिया गया, यानी पहली दो रकातों में किरात करेंगे तो वाजिब अदा हो जाएगा। और ये मसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि फ़र्ज नमाज की कोई सी भी दो रकातों में सूरह फातिहा की किरात ये करना वाजिब है, बल्कि दुरुस्त ये है कि पहली दो रकातों में किरात करना सूरह फातिहा की ये वाजिब है। लिहाजा अगर फ़र्जों की पहली दो रकातों या इनमें से एक रकत में सूरह फातिहा कसदन ना पड़ी तो नमाज वाजिबुल अदा होगी, सजदा सहव से भी इसकी तलाफी मुमकिन नहीं होगी। इसी तरह अगर सहवन यानी भूलकर सूरह फातिहा रह गई और उस रकत के सजदे में जाने तक याद ना आया तो इस सूरत में भी सजदा सहव वाजिब हो जाएगा, सजदा सहव करेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, अगर सहवन सूरह फातिहा रह जाने की सूरत में अगर اسی رکعت کے رکوع میں یا رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے پہلے بندے کو یاد آ گیا تو واپس لوٹے، واپس لوٹ کر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت اس نے نہیں پڑھی تھی، یا اکیلی سورت پڑھی تھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، یا سورہ فاتحہ پڑھی اور ساتھ میں کوئی سورت نہیں پڑھی تھی، تو دوبارہ لوٹے، لوٹ کر وہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع کرے کہ اب یہ فرض ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کا پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں کہ جتنے احکام سیکھے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔